कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
Thank you. प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इन दिनों हम न्यायों की पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं और पिछले अध्ययन में हमने ओत्नियल न्यायी होने के बारे में देखा था कि किस प्रकार से उसने लोगों को विजयी कराया। और इसी प्रकार से आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहोशू ने मूसा के बाद इसराइल की बागडोर को संभाली और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में बसाया। वह तो यहोवा की दृष्टि में अपना उत्तरदायित्व निभाने में सराहनीय रहा, परंतु इसराइल उद्देश्य से चूक गया। उन्होंने न तो संपूर्ण देश पर अधिकार किया और न ही राष्ट्रीय एकता निभाई। वे शीघ्र ही परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अन्य जातियों में विवाह करके परमेश्वर की दृष्टि में अनाज्ञाकारी ठहरे और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। 8 वर्ष कष्ट भोगने के बाद उन्होंने यहोवा को पुकारा और यहोवा कालेब के दामाद ओत्नियल पर उतरा और कुश रिशाताइम को हराकर अपने लोगों को छुड़ाया। इसराइल 40 वर्ष मर्यादा में रहा, परंतु शीघ्र ही उन्होंने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मेरे मित्रों, हम न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, उसके बाद अनात का पुत्र शमगार हुआ और उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। परमेश्वर ने एहूद को न्याय बनाया, परंतु एग्लोन की हत्या के अतिरिक्त उसमें अन्य कोई योग्यता नहीं थी। वह बायां हाथ काम में लेता था, अतः यह उसके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ और उसने कपट द्वारा इसराइल पर अत्याचार करने वाले एग्लोन का नाश किया। एहूद परमेश्वर का साधन बना और उसके द्वारा एग्लोन की हत्या से परमेश्वर का उद्देश्य सिद्ध हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर अनेक बार मानव समुदाय से कैंसर, पाप का कैंसर समाप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करता है। एहूद के इस काम के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों को जीवन मिला, अर्थात उनका जीवन बचा। अनेक जन कहते हैं कि हमारी सभ्यता ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देती है। क्या वे वास्तव में सच्चे दिल से कह रहे हैं? हम युद्ध में बम का प्रयोग करते हैं जिससे अनेक मनुष्यों की जान जाती है। युद्ध अति भयानक स्थिति है। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि एहूद के बाएं हाथ के उपयोग के अतिरिक्त अन्य कोई असामान्य प्रतिभा नहीं थी। मित्रों, आवश्यक नहीं कि परमेश्वर द्वारा काम में लिए जाने के लिए हम में कोई असाधारण प्रतिभा हो। आप लोगों ने विलियम केरी के बारे में सुना होगा। वह एक दिन मनुष्य था और व्यवसाय से चर्म का व्यापार करता था या चर्मकार अर्थात जूते सीने का काम करता था। और डीएल मूडी, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, किसी ने मुझे मूडी की वाणी का टेप दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज ऐसी प्रभावशाली है। मैं उसके चित्र देखकर ऐसी आवाज की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यद्यपि उसकी शिक्षा अधिक नहीं थी, परंतु उसकी आवाज उसे शिक्षित घोषित करती थी। मेरे मित्रों, जी कैम्बेल मॉर्गन ने जब कलिसिया में पहला उपदेश सुनाया तो समिति ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने निर्णय सुनाया कि वह प्रचारक कभी नहीं बन पाएगा, परंतु वह अपने युग का एक महान बाइबल टीकाकार बना। केरी, मूडी, मॉर्गन, तीनों ऐसे कमजोर व्यक्तियों को परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से काम में लिया। ऐसे अनेक दिन मनुष्य हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनेक अन्य सेवाओं में काम में लिया है। जेसी पेनी एक प्रचारक के पुत्र थे। पिता के मरणोपरांत वे बेसहारा हो गए थे, क्योंकि उन दिनों में मृतक प्रचारकों की पत्नियों को कलीसिया पेंशन नहीं देती थी। उन्हें जीवन यापन के लिए कपड़े धोना पड़ा। उन्होंने संकल्प किया कि वह एक दिन इतना पैसा कमाएगी कि अपनी माता को ही नहीं, गरीब प्रचारकों और प्रचारकों की विधवाओं को भी सुविधा देगी। आज अमेरिका के फ्लोरिडा नगर में उनके नाम से एक आवास है, जहां सेवानिवृत्त प्रचारक और प्रचारकों की विधवाएं रहते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें इस रूप में उपयोग किया। मेरे मित्रों, एक व्यक्ति ने एक कुआं कोड़ना आरंभ किया और कुछ समय के बाद उसे एक तेल का खदान मिला और यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि उसने प्रार्थना किया था कि यदि परमेश्वर उसे धन कमाने के योग्य बनाएगा तो मैं उसके लिए यह धन काम में लाऊंगा। उसने अपना वचन निभाया। उसने एक कोष स्थापित किया जिसके द्वारा बहुत से प्रभु के दासों को वह मदद कर पाया। मेरे प्रियो, न्यायियों के युग की नाई परमेश्वर आज भी उन साधारण मनुष्यों को अपने महान उद्देश्य के निमित्त काम में लेता है जो उसे समर्पित हो जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं तो मेरे मित्रों, वह निश्चय ही आपको भी अपने काम में लेगा। वह आता है और तीसरा न्याय हम देखते हैं कि शमगर। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 पलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। मेरे मित्रों, यहाँ मनुष्य नहीं, युद्ध विधि अधिक सराहनीय है। उसने बैल का पैना काम में लिया जो अत्यधिक अपरिकृष्ट हथियार है। उस समय तक इसराइली लोहे के हथियार काम में नहीं लेते थे, अतः उनके पास जो भी था उसने उसे ही हथियार स्वरूप काम में लिया। आज मनुष्य कहता है हमारे पास सर्वोत्तम एवं आधुनिक साधन होना चाहिए। उत्तम विधि हो तो बहुत अच्छा है, परंतु संदेश जो प्रचारक के पास है वह कैसा है? हवाई जहाज होना बहुत अच्छा है कि प्रचारक यात्रा कर पाए, परंतु जब प्रचारक क्षेत्र में पहुंचता है तब क्या वह परमेश्वर का वचन सुनाता है? मेरे मित्रों, मैं यही चाहता हूं कि टीवी एक अति उत्तम साधन है, परंतु आज उसका उपयोग सही रूप से नहीं किया जा रहा है, अर्थात उसका दुरुपयोग हो रहा है। महत्वपूर्ण बात साधन नहीं, संदेश है। पैसा यदि सही हाथों में है तो परमेश्वर को समर्पित किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने मूसा की लाठी से अनेक चमत्कार किए। उसने दाऊद की गोफन से एक ही पत्थर काम में लिया। दोरकस के पास तो केवल सुई और धागा था। एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। ये सब साधन परमेश्वर को समर्पित किए गए थे। मेरे मित्रों, आपके पास कुछ भी हो सकता है, यदि आप उसे परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो वह उसका सामर्थ्य रूप से उपयोग करेगा। इस अध्याय में जिन 3 न्यायियों का उल्लेख है वे साधारण पुरुष और परमेश्वर की सहकारिता थे। दूसरा न्याय यहूद। हम न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इसराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। मेरे प्रियो, इसराइल के इतिहास का चक्र घूमकर फिर वहीं आ गया है। इसराइल कुछ समय परमेश्वर की उपासना करता रहा, परंतु फिर वही काम करने लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा और घृणित है, अर्थात ईश्वर त्याग। तब हम आगे पढ़ते हैं न्यायों 3:13 में लिखा है, इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। इसराइल जब जब परमेश्वर से विमुख हुआ, दूर हुआ, तब तब परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में कर दिया। इस बार उनके साथ क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं न्यायों 3:14-15 में। तब इसराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामिनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह 72 था। इसराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। मेरे मित्रों, चक्र चल रहा है। वे फिर परमेश्वर को पुकारने लगे और परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता खड़ा किया। अब यह कौन है? यह गेरा का पुत्र एहूद है जो बिन्यामिन के गोत्र से है। यह उल्टे हाथ से काम करता है, अर्थात बाएं हाथ से। यही उसकी एकमात्र विशेषता है। तब हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16-31 में लिखा हुआ है, एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2-धारी तलवार बनवाई और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जांग पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया, वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुठ भी पेट में बैठ गई और फल चर्बी में धसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी की किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। मेरे मित्रों, यह काम न तो बहादुरी का था और न ही रोमांसवादी था। उसके नाम का अर्थ है लाल बाल। उसका खंजर दोधारी था। उसने अपनी दाहिनी ओर वस्त्रों के नीचे वह खंजर छिपा रखा था। उस समय अधिकतर सब ही दाहिना हाथ काम में लेते थे, अतः तलाशी लेते समय प्रायः बाईं ओर ही ध्यान दिया जाता था। राजा के सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाईं ओर खोजा और प्रवेश की अनुमति दे दी। वह राजा के पास भेंट, संभवतः श्रद्धांजलि लेकर आया था। एग्लोन बहुत मोटा था। उसे भेंट अर्पित करने के पश्चात राजा को भेद की बात सुनाने का नाटक किया गया। राजा ने संतरियों को बाहर जाने के लिए आज्ञा दिया कि उसे कोई गहरी भेद की बात का पता चले, परंतु वहां तो खून खराबा होने वाला था। अवसर पाकर उसने राजा की तोंद में खंजर घुसा दिया। खंजर राजा के पेट की चर्बी में छिप गया, जैसे सुअर को काटा गया हो। एहूद ने द्वार बंद कर दिए और वहां से चला गया। एहूद का यह काम कायरता का नहीं था, उसमें बड़े साहस की आवश्यकता थी। न्यायों की पुस्तक 3:24-25 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते लज्जित हो गए। तब यह देख कर कि वह अटारी की किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मोआब के राजा एग्लोन के सेवक द्वार के बाहर खड़े थे। उन्होंने राजा के कक्ष के द्वार पर ताला लगा देखा तो सोचा कि राजा सो रहा है, अतः उन्होंने उसकी नींद में विघ्न डालना उचित न समझा। बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद जब उन्होंने चिंतित होकर द्वार का ताला खोला और भीतर प्रवेश किया तो क्या देखा कि राजा भूमि पर मरा पड़ा है। हम न्यायों 3 के 26 पद में आगे पढ़ते हैं, जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक एहूद भाग निकला और खुदी ही मूर्तों की परली ओर होकर सेरी में जाकर शरण ली। मेरे मित्रों, जब राजा के सेवक उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे तब एहूद के पास भाग निकलने का अच्छा अवसर था। वह मोआब से भागकर सेरे में आ गया, जहां उसे खोज पाना संभव नहीं था। हम न्यायों की पुस्तक 3:27-30 पद में पढ़ते हैं, वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इसराइली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यर्दन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हृष्टपुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इसराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 समाप्त होता है और हम 4 में कुछ खास विषयों को देखते हैं। इसराइल का तीसरा ईश्वर त्याग, परमेश्वर दबोरा और बाराक द्वारा उन्हें मुक्ति दिलाता है। आइए देखें दबोरा और बाराक। न्यायों की पुस्तक 4:1-3 में लिखा है, जब एहूद मर गया तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। यहूद की मृत्यु के पश्चात इसराइलियों ने फिर से परमेश्वर का क्रोध को भड़काया। इस बार परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के दंड स्वरूप उन्हें कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। उसके सेनापति के साथ 900 लोहे के रथ थे, जिसके कारण इसराइली थरथराते थे, क्योंकि उनके पास युद्ध का ऐसा सामान नहीं था। याबीन ने इसराइल को 20 वर्ष दासत्व में रखा। तब हम आगे पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इसराइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं इस बार इसराइल में एक स्त्री का उदय हुआ जो नबिया और न्यायी दोनों कहलाती थी। लिखा है कि वह लपीदोत की पत्नी थी, परंतु मैं यह कहना उचित समझूंगा कि वह दबोरा का पति था। उससे परमेश्वर ने इसराइल पर न्यायी नियुक्त किया। उसने सेनापति बारा को बुलवा कर कहा कि उसे अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। उसे बैरियों से युद्ध करके इसराइल को मुक्ति दिलाना है। हम न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में आगे पढ़ते हैं। उसने अभिनोम के पुत्र बारा को केदेश नेप्ताली में से बुलवा कर कहा, क्या इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबुलिनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इतिहास में कोई वीर सेनापति हुआ तो वह बाराक था। उसे तो वास्तव में युद्ध के मैदान में होना था, परंतु वह यहाँ स्त्री के पल्लू में मुंह छिपाए बैठा है। यदि दबोरा युद्ध के मैदान में नहीं जाएगी तो वह भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कहना यही है, यदि उसके साथ यह नबिया या भविष्यवक्तिन हो तो उसकी समझ में वह विजयी होगा। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि परमेश्वर को एक स्त्री को काम में लेना पड़ा, और वह भी दबोरा को। हम न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बारा के संग केदेश को गई। दबोरा ने बारा को वचन दिया कि वह उसके साथ अवश्य जाएगी, परंतु विजय का श्रेय तब एक स्त्री को प्राप्त होगा, पुरुष को नहीं। सिसरा की पराजय और मृत्यु के बारे हम देखते हैं। दबोरा एक खरी स्त्री थी जो अपनी प्रजा को दासत्व से मुक्त करना चाहती थी। बाराक ने अपनी सेना एकत्र की और बैरी पर आक्रमण किया और परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की। उन्होंने बैरी की सेना का सर्वनाश कर दिया और एक भी सैनिक नहीं बचा। हम न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, परंतु सिसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह एक अन्य जाति स्त्री थी। हम न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 18 से 21 पद में आगे पढ़ते हैं, तब याएल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक मुट्ठी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोंक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। मेरे मित्रों, संपूर्ण सेना का विनाश देख सीसरा अपनी जान बचाने के लिए भागा, क्योंकि कनानियों ने केनियों को सताया नहीं था, इसलिए उसने हेबेर की पत्नी याएल पर भरोसा रखा। याएल ने बड़ी श्रद्धा से उसका सत्कार किया, अतः वह निश्चित होकर सो गया। और मेरे मित्रों, उस स्त्री ने उसके कान में खूंटी ऐसी ठोंक दी कि वह पार होकर भूमि में धस गई और सीसरा का अंत हुआ और इसराइल का उद्धार हुआ, अर्थात सीसरा मर गया और इसराइल को उससे मुक्ति मिली। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम विशेष बातों को देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, चाहे ओतनियल हो, चाहे एहूद हो, चाहे दबोरा हो। यदि आप पूर्ण रीति से परमेश्वर को अर्पित होते हैं तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको किसी भी रूप में इस्तेमाल करेंगे। आप कम पढ़े लिखे हो, या आप कम ताकतवर हो, या किसी भी रीति से आप दुर्बल क्यों ना हो, वह आपके साथ है। सिर्फ आपको उसके कार्यों के लिए समर्पित होना है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी समझ प्रदान करे, ताकि हम अधिकाई से अपने आप को समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।